और अभी इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ आदरणीय शिलो दीदी जी पहुंच गए हैं, एक हाथ से दीदी जी का स्वागत करेंगे। अभी इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं, उससे पहले हम 2 मिनट साइलेंस में बैठते हैं।
भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। नवयुग का निर्माण कराने की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर
शांति। पुनः इस सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज का बहुत सुंदर टॉपिक है और इस सुंदर टॉपिक में बहुत सारे राज सीक्रेट्स खुलने वाले हैं। आप ध्यान से सुनिएगा और उसका आनंद लेते रहिएगा। आज का जो टॉपिक है, रोल ऑफ पिताश्री ब्रह्मा बाबा इन एस्टैब्लिशिंग बेस्ट फ्यूचर। बेस्ट फ्यूचर के लिए ब्रह्मा बाबा का क्या रोल रहा? हमारा जो मेन कॉन्फ्रेंस ही चल रहा है कि बेस्ट फ्यूचर के लिए, बहुत अच्छा टॉपिक है। 2-3 दिन से हम लोग सुन रहे हैं इस टॉपिक पर, बेस्ट टुमारो के लिए। बहुत अच्छी बातें हमने सुना और अभी हमें एक फीलिंग भी आ रही है, फील हो रहा है कि सचमुच वो बेस्ट टुमारो हो जाएगा। क्या कहेंगे? हो जाएगा, हो जाएगा, बशर्ते बशर्ते वर्तमान, आज का समय जो है, वर्तमान समय हमारा अच्छा होगा, तभी तो होगा ना। तो ब्रह्मा बाबा के बारे में हम लोग अभी सुनना चाहेंगे। आप सबके मन में संकल्प चल रहा होगा, ब्रह्मा बाबा कौन है? आज सवेरे जो हमने मेडिटेशन क्लास सुना, परमात्मा का सत्य परिचय सुना सबने, और अभी भी परमात्मा का जो छत्र छाया के ऊपर हमने बहुत सारे बातें सुनी कि परमात्मा निराकार है। स्पष्ट हुआ सभी को? स्पष्ट हुआ? परमात्मा निराकार है, उनको अपना शरीर नहीं है, ठीक है, उनको अपनी देह नहीं है। और ये संसार में आएंगे, इस धरती पर आएंगे, वो सारा कार्य कैसे करेंगे? क्योंकि चाहे वो आत्मा हो चाहे परमात्मा हो, ये धरती पर कोई भी कार्य करे, उनको शरीर का आधार की जरूरत होती है, शरीर की जरूरत होती है। तो परमात्मा निराकार होने के कारण उनको शरीर का आधार लेना पड़ा। परमात्मा जानते थे, जानते हैं कि आने वाला समय, बहुत पहले आने वाला समय बहुत भयानक होगा, पापाचार बढ़ेगा, मूल्यों की गिरावट होगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, बहुत सारी बातें, पतितपना, गलत इजीली कर देंगे। अब देखो, पहले जमाने में होता था, सच बोला इजी हो जाता था, झूठ बोलना 10 बार सोचना पड़ता था, लेकिन आज समय क्या आ गया है, कैसा आ गया, सच बोलने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है, झूठ तो वैसे ही बोल देते हैं। तो जो समय इस तरीके से आने वाला है, खतरनाक समय है, इसीलिए परमात्मा को संकल्प आया ये धरा पर आकर के अपना श्रेष्ठ कार्य करें। तो इसीलिए परमात्मा ने एक साधारण मानव तन में प्रवेश किया, जिनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखा, पहले वो दादा लेखराज थे, उनके द्वारा परमात्मा ने श्रेष्ठ कार्य शुरू किया। ये जो कार्य चल रहा है ये डायरेक्ट परमात्मा का ही कार्य चल रहा है, और इस कार्य के द्वारा जो परमात्मा को कार्य करना था कि प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा सबसे पहले प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इस संस्था की स्थापना की, इसके द्वारा ही अनेक कार्य करते रहे। जो ब्रह्मा बाबा की बातें हम लोग अभी सुनेंगे चर्चा करेंगे, तो ब्रह्मा बाबा भविष्य दृष्टा थे, विजनरी थे। उनके मन में जब जैसे ही परमात्मा ने उनके तन में प्रवेश किया, उनके मन में एक विजन था कि भारत को विश्व गुरु बनाना है और महिलाओं की शक्ति, नारी की शक्ति को आगे बढ़ाना है। युवा आप देखते हैं कितने नेगेटिव हो रहे हैं, पहले ही बाबा का, ब्रह्मा बाबा के मन में था कि युवाओं को सही रास्ता दिखाना, निर्माण कार्य में लगाना। सचमुच आज से 87 इयर्स पहले की बात है, तब बाबा को संकल्प आया, लेकिन आज हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा का जो संकल्प था वो इस समय पूरा हो रहा है, कि भारत का डंका सारे विश्व में बज रहा है। और सचमुच महिलाओं के प्रति अभी दृष्टिकोण लोगों का बदल रहा है, और इस ब्रह्मा कुमारी से बहुत सारे युवा जुड़े हैं, लाखों युवा जुड़े हैं, जिन्होंने अपना जीवन को पवित्र बनाकर नशा, गलत आदतों से दूर रह करके ब्रह्मा बाबा का जो संकल्प था शुरुआत, वो संकल्प अब साकार कर रहे हैं। सचमुच ब्रह्मा बाबा की जो जीवन थी वो त्याग वाली थी, तपस्या वाली थी, पवित्रता थी जीवन में, जिसके कारण आज हम देखते हैं उन्हीं एक शक्ति, पवित्रता की शक्ति, उस शक्ति के कारण आज दिन तक भी ब्रह्मा कुमारी से लाखों लोग, लाखों परिवार जुड़ रहे हैं। सिर्फ देश नहीं, विदेश में, उस समय जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे, उस समय कोई विदेश में कोई सेवाएं नहीं थी, हमारे सेंटर्स नहीं थे, लेकिन ब्रह्मा बाबा उस समय भी एक सकारात्मक शक्ति, वाइब्रेशंस विदेश में भी भेजते थे चारों तरफ, जिस परिणाम स्वरूप आज हम देखते हैं 140 देशों में ब्रह्मा कुमारी की शाखाएं हैं। ताली बजाइए, हर जगह पे हैं। और सिर्फ शाखाएं खोले नहीं, खोल करके उससे कितनी सारी आत्माओं ने अपना जीवन को श्रेष्ठ बनाया। तो उस समय ब्रह्मा बाबा का जो संकल्प था आज वो साकार हो रहा है, लेकिन बाबा ने शुरू से ही, ऐसा नहीं कि कोई हम संकल्प लेते हैं तो कोई इजीली हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा पीछे मुड़ के नहीं देखा, हर चीज का उन्होंने फेस किया, लेकिन जो लक्ष्य था ब्रह्मा बाबा का, वो लक्ष्य के साथ वो चलते रहे और अपने स्वयं पर उन्होंने अटेंशन दिया, और मूल्यों के आधार पर ही वो चले। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे भाई बहनों के जीवन में परिवर्तन आया है। तो मैं समझती हूं कि उनके जो श्रेष्ठ संकल्प के कारण आज हम महसूस होता है कि वो दिन दूर नहीं है जो राम राज्य की जो हम परिकल्पना करते हैं वो अवश्य जल्दी ही स्थापना होने जा रही है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, आज वो उस हस्ती से हम सुनेंगे, उस महारथी से सुनेंगे जिन्होंने ब्रह्मा बाबा के हाथों से, हस्तों से, वरदानों से पले हैं। आदरणीय शीलू दीदी, ये महान आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, जिन पर डायरेक्ट भगवान की दृष्टि पड़ी और भगवान ने इनको वरदान दिया कि बच्ची आपके जीव में सरस्वती का वास है। और सचमुच अभी हम लोग सुनेंगे, दीदी जी के बोल में इतनी मधुरता है, इतनी स्पष्टता है, इतनी गहराई है, हम सुनते हैं तो सुनते हैं ऐसा लगेगा कि दीदी सुनाते रहें और हम सुनते रहें। तो दीदी जी का थोड़ा समय परिचय देना चाहूंगी। आदरणीय दीदी जी, शीलू दीदी जी 12 साल की उम्र से ही, बचपन से ही ब्रह्मा कुमारीज के कांटेक्ट में आई और अपना बॉम्बे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करके इस ब्रह्मा कुमारी सेवाओं के लिए अपना जीवन को ईश्वरीय सेवा के लिए समर्पित किया। आप देश विदेश में अपनी खूब अच्छी सेवाएं, अपनी धारणाओं के, अपने जीवन से अनेक आत्माओं की सेवा की और आपने अनेकों लाखों लोगों को परमात्मा से जोड़ा है और उन आत्माओं की सारी दुआएं दीदी जी को मिलती हैं। जैसे दीदी जी की आयु बढ़ रही है लेकिन आप देख रहे हैं उनके चेहरे की चमक भी, रूहानियत भी बढ़ रही है। तो दीदी जी 60 देशों से 60 देशों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और आप एजुकेशन विंग के वाइस चेयरपर्सन हैं और आप माउंट आबू में ही रहते हैं, आपको सौभाग्य है। तो मैं दीदी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ब्रह्मा बाबा के बारे में हमारे हमें बताएंगे, इस विषय को स्पष्ट करेंगे। आदरणीय शीलू दीदी जी, मैं बहनों से रिक्वेस्ट करती हूँ, वो दीदी जी का स्वागत करेंगे फूलों से। आप ताली बजाते रहे, आप थक तो नहीं गए, फ्रेश हैं। अभी दीदी जी से रिक्वेस्ट है, इस विषय को स्पष्ट करेंगे।
ओम शांति, फिर से कहेंगे ओम शांति, ओम शांति। आप सभी कहाँ आए हैं? ज्ञान सरोवर में तो आए हैं, लेकिन ये आप सबका अलौकिक घर है, परिवार है, क्योंकि भगवान का घर है तो यह परिवार है। यह एक पाठशाला है और एक बहुत बड़ा यज्ञ है। यज्ञ क्यों रचा जाता है? जब कोई आफत आती है तब यज्ञ रचा जाता है। तो भगवान ने आज से 87 वर्ष पूर्व 1936 में एक बहुत बड़ा यज्ञ रचा और उसी का ही यह नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो इस यज्ञ का क्या इतिहास है, जिसमें ब्रह्मा बाबा का भी इतिहास आ जाएगा, वो आपको हम सुनाना चाहेंगे चित्रों के माध्यम से, एक दिव्य कहानी के रूप में। तो बहुत ही सुंदर रूप से ये चित्र दिखाए गए हैं, हम देखते जाएंगे और ऐसे अनुभव करेंगे कि हमारे सामने वो दृश्य आते जा रहे हैं। मानो एक आंखों देखा हाल आप सुन रहे हैं और आप भी उसका लाभ ले रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। तो पिता श्री ब्रह्मा बाबा कौन थे, उनकी जीवन कहानी क्या है, वो आपको हम बताना चाहेंगे और कैसे उनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा पड़ा, इनका पूर्व नाम क्या था और कैसे परमात्मा ने इनको यह दिव्य नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा। अब आदि पिता ब्रह्मा बाबा शिव परमात्मा ने इनमें दिव्य प्रवेश कर ये यज्ञ रचा और आज हम देख रहे हैं 1936 में ये शुरू हुआ और आज 137 140 देशों में इसकी शाखाएं हैं और हमारे जैसी हजारों बहनें इसमें समर्पित रूप से जीवन बिता रहे हैं और आप जैसे लाखों परिवार इसमें नियमित विद्यार्थी बन करके लाभ ले रहे हैं। तो पिता श्री ब्रह्मा बाबा का पूर्व नाम दादा लेखराज था और लखीराज बाबू के नाम से आप बहुत प्रसिद्ध जौहरी थे। बहुत बड़ी बिजनेस थी इनकी, हीरे जवाहरातों के जेवर बनाते थे। कलकत्ता में इनका बहुत बड़ा शोरूम था और इनके ग्राहक तो कोई छोटे मोटे तो नहीं होंगे क्योंकि हीरो के जो जेवर होते हैं वो तो बहुत ही महंगे होते हैं। तो इनके ग्राहक उस समय के राजा महाराजा थे जो भारत में राज्य करते थे और क्योंकि अंग्रेजों का जमाना था तो अंग्रेज भी वहाँ से वो जेवर लेते थे। यहाँ तक कि क्वीन विक्टोरिया की उस समय जब भारत आई थी तब वो भी इनके दुकान में गए थे। तो नाम तो इनका बहुत ही प्रसिद्ध था और राजाएं महाराजाएं उनको अपने महलों में बुलाते थे क्योंकि उनकी रानियां तो दुकानों में जाएंगी नहीं और जेवर उनको चाहिए होते थे तो बाबा को बुलाते थे और राजाएं जब बाबा को देखते थे उनके अंदर कितना डिसिप्लिन है, कितनी व्यवहार शुद्धि है, कितनी रॉयल्टी है, तो कुछ राजाएं ऐसे भी कहते थे भगवान ने बहुत बड़ी भूल की, राजा तो आपको बनाना चाहिए था और आपको एक व्यापारी बना दिया और हमें राजा। लेकिन ये उनकी आत्मा का स्वरूप था इतना रॉयल जो उनके व्यवहार से पता चलता था। वैसे तो आपका जन्म 1876 में हैदराबाद सिंध के गांव में हुआ था। वो छोटा सा गांव हैदराबाद सिंध का, उस समय तो सब अखंड भारत था और इनके पिता एक छोटे से प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर थे और गरीबी का जीवन तो था ही और उस जीवन से कैसे एक इतने सफल व्यापारी बन गए अपने एक जीवन काल में, वो भी एक अद्भुत जीवन कहानी है। तो पिता श्री ब्रह्मा बाबा का लौकिक परिवार, पांच बच्चे थे उनके, तीन बेटियां थी, दो बेटे थे और लगभग जब उनकी आयु 60 वर्ष की हुई 1936 में तब उनके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आए। वो परिवर्तन क्या आए वो आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले भी बाबा बहुत बड़े दानी थे। धनी तो थे ही पर दानी भी थे, बड़ा दिल था। उनके द्वार पर जो भी आता था वो कभी हाथ खाली नहीं जाता था। संत महात्माएं भी उनके घर में रहते थे और सत्संग कराते थे। तो जितने ही धनी थे उतने ही दानी थे, उतने ही बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन उनके अंदर में सत्यता की खोज थी। सत्य को पहचाने, सत्य क्या है, हम कौन है, ईश्वर कौन है, हम क्यों इस संसार में आए, आखिर भगवान को ये सृष्टि रचने की क्या पड़ी थी, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, जीवन के सत्य वो जानना चाहते थे। और उसके लिए उन्होंने बहुत गुरु भी की अपने जीवन काल में, लेकिन उनकी खोज जारी थी। और एक दिन की बात है, क्योंकि बाबा विष्णु की भक्ति करते थे, विष्णु उनके इष्ट थे, तो एक दिन की बात है वो विष्णु की भक्ति में तल्लीन थे कि अचानक उनको विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। ये 1936 की बात है, जब उनकी आयु लगभग 60 वर्ष की थी। विष्णु चतुर्भुज उनके सामने आकर उपस्थित हो गए, शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु उनके सामने उनको दर्शन दिया और एक वरदान दिया, अहम चतुर्भुज तत्त्वम, जैसे मैं विष्णु चतुर्भुज हूँ वैसे तुम भी हो। अब बाबा ने जब ये आकाशवाणी जैसे ये सुनी, या जो संबोधन सुना विष्णु के मुख से निकला कि आप मेरे जैसे हो, अहम चतुर्भुज तत्त्वम, तुम भी मेरे जैसे हो, तो वो साक्षात्कार इतना सुंदर था। और फिर बाबा ने देखा विष्णु के कई रूप, क्योंकि कई मंदिर है विष्णु के भारत में, तो वो सारे रूप उनके सामने आते गए एक एक, और हर एक रूप ने उनको यही वरदान दिया, अहम चतुर्भुज तत्त्वम, अहम चतुर्भुज तत्त्वम। और बाबा देखता रह गया। जब ध्यान से नीचे उतरा तो बाबा को एक प्रश्न मन में उठा, ये वरदान कैसे मुझे मिल गया, विष्णु तो मेरे इष्ट हैं, मैं तो उनका दास हूँ, सेवक हूँ, मैं तो उनका भक्त हूँ, ये वरदान कैसे मिला कि तुम मेरे जैसे हो, मैं तो इन जैसा नहीं हूँ, मैं तो संसारी हूँ। तो अपने आप को वो समझ नहीं पाए, और ये इतना ऊंचा वरदान उनको क्यों मिला ये तो उनको बिल्कुल समझ में नहीं आया। तो ये अपने गुरु के पास गए जो उस समय उनके गुरु थे, और गुरु को ये सारी बात बता दी। अब गुरु ने भी जो समझा उस अनुसार गुरु ने जो कहा कि हो सकता है आपको भगवान ने कोई विशेष कार्य करवाना है आपसे, इसलिए आपको ये वरदान दिया कि आप मेरे जैसे हो। तो बाबा को लगा मुझे भगवान का कार्य करना है, कौन सा कार्य है? वो भी तो मुझे पता चले। तो गुरु ने उनको राय दी कि आप उसके लिए एकांतवास में चले जाओ, कहीं ऐसा दूर एकांतवास में और विष्णु की भक्ति में आप तल्लीन हो जाओ, तो शायद भगवान आपको कुछ और वरदान दे और आपको ये पहचान दे, समझ दे कि आपको अब आगे क्या करना है। क्योंकि गुरु भी कैसे बता सकता है कि कैसे भगवान ने उनको ऐसा ऊंचा वरदान दिया। तो बाबा एकांतवास करने के लिए, क्योंकि हैदराबाद सिंध में रहते थे, तो बिजनेस तो थी कलकत्ता और हैदराबाद सिंध, तो उस समय एक ही भारत ही था, तो आते जाते रहते थे। तो बाबा कुछ समय के लिए बनारस चले गए। बनारस वाराणसी में उनके एक मित्र रहते थे, उनकी बहुत बड़ी कोठी थी, और अक्सर वो उनको बुलाते थे वाराणसी में, क्योंकि वो वहाँ पर उनके जो लौकिक पिता थे उनको भी काशी वास कराया था, क्योंकि वो भी वो शिव के भक्त थे। तो कैसे वो मित्र ने उनको निमंत्रण दिया, तो उन्होंने सोचा मैं बनारस जाकर कुछ एकांतवास करूँगा ताकि भगवान हमको कुछ और संकेत दे कि वो हमसे क्या कराना चाहते हैं। तो वहाँ पर तपस्या कर ही रहे थे, विष्णु का ही ध्यान कर रहे थे कि अचानक उनको एक विचित्र साक्षात्कार हुआ, जिसमें उसने कलयुगी दुनिया का महाविनाश देखा और तीन रूप से इस कलयुगी दुनिया का विनाश होता हुआ देखा। एक तरफ बाबा ने देखा एक अणु युद्ध का रूप, हवाई जहाज आकाश में मंडरा रहे हैं और कुछ हवाई जहाज से गिरा एक मिसाइल, और वो जहां गिरा वहां आग ही आग फैल गई। ये बाबा ने देखा और देखते ही देखते बाबा ने देखा सब आग में जलकर राख हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद दूसरा साक्षात्कार किया जिसमें ग्रह युद्ध का साक्षात्कार किया। आपस में लड़ रहे हैं, एक दो को मार रहे हैं, काट रहे हैं, बंदूकें चल रही है, लड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं और देखते ही देखते बाबा ने देखा खून की नदियां, एकदम सिविल वॉर का रूप था वो बाबा ने देखा, ग्रह युद्ध। फिर थोड़े समय के बाद एक तीसरा रूप देखा जिसमें प्राकृतिक आपदाएं बाबा ने देखी। एक एक तत्व अपना कहर मचा रहा था, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, मानो पांचों ही तत्व एक साथ मिल करके धरती को नष्ट कर रहे थे। और उसके बाद बाबा ने अनुभव किया एकदम जैसे प्रलय, बिल्कुल सब कुछ नष्ट हो गया। तो बाबा तो रोने लग गए कि हे भगवान, ये दुनिया का ऐसे ही खत्म हो जाएगी। अगर ये दुनिया ऐसे ही खत्म हो जाएगी तो आपने रची क्यों, क्योंकि मन में प्रश्न तो उठते थे उनके, ये रची क्यों अगर ऐसे ही खत्म हो जाएगी, फिर भगवान मुझे क्या करना है, आपने इतना वरदान दे दिया हमें, मेरे तो मेरे समान हो, तो मुझे क्या कार्य करना है वो भी हमें बताएं। तो उससे बाबा को वैराग इतना आ गया दुनिया से जो बात मत पूछें। फिर कुछ समय के बाद बाबा ने परम धाम का साक्षात्कार किया, अखंड ज्योति का एक महतत्व, सुनहरा लाल प्रकाश और उसमें छोटे छोटे सितारे एक उल्टे झाड़ के रूप में बाबा ने देखे, उसका बीज ऊपर और वृक्ष नीचे। और फिर बाबा जैसे देखता रहा उनको और अचानक बाबा ने देखा उस झाड़ से जो सितारों का झाड़ था वो छोटे छोटे सितारे धीरे 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 करके धरती पर आने लगे, धरती पर आने लगे। और जैसे धरती पर पहुंचे एक एक सितारा एक एक देवी और देवता का रूप धारण करता गया। और बाबा ने देखा कि कैसे एक संसार ही बदल गया, कहां विनाश का रूप बाबा ने देखा था और अभी पूरा संसार बदल गया, जहां प्रकृति अपने सुंदरतम स्वरूप में एक एक मनुष्य एक एक देवी और देवता के रूप में, जहां इतनी सुंदरता जो वर्णन भी नहीं की जा सकती है। तो और जैसे बाबा देखते गए तो बाबा को लगा अरे इतना सुंदर संसार। और फिर बाबा ने देखा उस सुंदर संसार में एक बहुत सुंदर सोने का महल जिसमें हीरे जवाहरा जड़े हुए थे और श्री लक्ष्मी श्री नारायण सिंहासन पर विराजमान थे। बहुत सुंदर बगीचा था और श्री लक्ष्मी श्री नारायण उस महल से बाहर आए और फव्वारे चलने लगे, शहनाइयाँ बजने लगी, चारों ओर सुगंध ही सुगंध, इतनी खुशियाँ सब मनाने लगे। और उसी समय उनको एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी क्या हुई, लखीराज उठो जागो, इस कलयुगी दुनिया के विनाश के बाद ऐसी सतयुगी स्वर्णिम दुनिया आने वाली है और ऐसी दुनिया तुमको बनानी है। ये भगवान ने उनको काम दिया, ऐसी स्वर्णिम दुनिया तुमको बनानी है। अब जब बाबा ध्यान से नीचे उतरे तो बाबा को तो कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि यही प्रश्न उठा, ऐसी दुनिया मैं कैसे बनाऊंगा, मेरे पास कौन सी ऐसी शक्ति है जो मैं दुनिया को स्वर्ग बना सकूंगा, उसके लिए क्या करना होगा। ये भगवान आपने सब ये बड़ा काम दे दिया लेकिन मुझे करना क्या होगा उसके लिए, फिर वही प्रश्न। लेकिन उससे एक बात तो सिद्ध हुई कि बाबा के मन में बहुत बड़ा वैराग तो आ ही गया, और इतना बड़ा कार्य करना है और उसके लिए अगर बनारस में बैठा रहूंगा तो वो काम तो होगा नहीं। तो पहले पहले इन्होंने सोचा ये जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ इसको मैं वाइंड अप कर लूँ। तो इनके पार्टनर कलकत्ता में रहते थे तो सीधा बनारस से वो कलकत्ता चला गया और अपने पार्टनर को ये सारी बातें बता दी कि ऐसे ऐसे मुझे अनुभव हुए हैं और भगवान हमसे कोई महान कार्य कराना चाहते हैं तो मैं ये धंधा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बाबा को जो हीरे थे वो तो पत्थर दिखाई देने लगे। दृष्टि बाबा की पूरी बदल गई, इतना वैराग आ गया संसार से। तो बाबा फिर वहाँ बनारस से वापस हैदराबाद सिंध चले गए, क्योंकि इतना सारा जो साक्षात्कार किया बाबा ने उससे एक परिवर्तन उसके जीवन में आ गया। अब क्या करना है वो तो वापस घर जाएंगे तभी तो पता चलेगा। और उस अपने उनके घर में उनके बच्चे पोतरे दोतरे सब याद कर रहे थे और एक पोतरा पैदा हुआ था, बच्चे तो शादीशुदा थे, पोतरा पैदा हुआ था। और जब पोतरा पैदा होता था तो इतना शादमाना करते थे, अंग्रेजों को बुलाना, राजाओं को बुलाना, यहाँ तक भी करते थे। लेकिन अपने कोई भी पार्टी में बाबा कभी भी शराब या नॉनवेज वो नहीं खिलाते थे, कभी नहीं देते थे, क्योंकि बाबा पक्के वैष्णव थे, पक्के वैष्णव। और तो वो कई बार कहते थे ये पार्टी तो फीकी रही है क्योंकि पीने को नहीं मिला। तो बाबा कहते थे मैं आपके कारण अपने धर्म को भ्रष्ट नहीं करूंगा, लेकिन बुलाते जरूर थे। तो परिवार का भी पूरा ध्यान रखते थे और बिजनेस भी उनकी बहुत सुंदर चलती थी। लेकिन जब बाबा वापस हैदराबाद आए तो बिल्कुल सिंपल हो गए, एकदम धोती कुर्ता बाबा पहनते थे क्योंकि 60 वर्ष से तो ज्यादा उम्र हो ही गई थी, तो बिल्कुल सिंपल और एकदम एकांत में रहते थे अपने घर में भी। तो बाबा अपने कमरे में बैठे रहते थे क्योंकि भगवान को कुछ प्रेरणा दे वो कि हमें क्या करना है। तो अचानक बाबा अपने कमरे में थे और उनको एक बहुत सुंदर दिव्य साक्षात्कार हुआ जिसमें उन्होंने शिव परमात्मा का साक्षात्कार किया, ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा का साक्षात्कार किया। और जैसे वो देखते रहे इतनी सुंदर छवि, इतना सुंदर वो प्रकाश का रूप था, इतना शीतल इतना प्यारा, जो बाबा देखते रह गए। और देखते देखते बाबा ने अनुभव किया कि वो धीरे धीरे वो जो स्वरूप था वो ज्योति उनके निकट आई और निकट आते 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 उनके अंदर में प्रवेश कर गई। ये बाबा ने अनुभव किया और एकदम उनकी आंखें बंद हो गई और आंखें बंद हो गई, उनका ललाट एकदम चमकता हुआ चारों ओर जैसे प्रकाश ही प्रकाश। तो उनके रिश्तेदार जो उनकी पत्नी उनकी खास बहू उस समय पहुंच गई कमरे में देखने लिए, तो उसने आवाज सुनी, बाबा के मुख से निकल रही थी कोई आवाज, शब्द निकल रहे थे क्योंकि शिव परमात्मा ने उनके तन में प्रवेश करके अपना परिचय इनके मुख से दिया। और क्या परिचय दिया? निजानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, मैं निजानंद रूप हूं, मैं शिव हूं। ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं शिव हूं। प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, शिव परमात्मा ने अपनी पहचान उनके मुख से दी, एक जैसे आकाशवाणी का रूप था, उनकी आवाज अपनी ओरिजिनल आवाज नहीं थी, एक आकाशवाणी के रूप से उनके मुख से। और फिर जब ध्यान से नीचे उतरे आंखें खोली तो आंखें भी एकदम जैसे प्रकाशित आंखें। तो बाबा से पूछा गया, बाबा आपने क्या अनुभव किया? तो बाबा ने कहा कोई प्रकाश था, कोई शक्ति थी और वो मेरे में प्रवेश हो गए, बाकी मुझे कुछ पता नहीं क्या था, परंतु वो प्रकाश और शक्ति मुझ में प्रवेश हो गई। बस फिर क्या था, एक चमत्कार हो गया। चमत्कार क्या हुआ कि जो भी बाबा को देखते थे उनके परिवार वाले रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी, तो वो जो साधारण उनका धोती कुर्ता वाला जो रूप था वो बदल करके श्री कृष्ण जैसे वहां खड़े हैं, ये उनको दिखाई देता था। श्री कृष्ण बांसुरी बजाता हुआ मोर मुकुटधारी पीताम्बरधारी बस खड़े हैं। लोगों को कैसे अनुभव होता था, और बाबा को जब कहते थे बाबा आप में तो जादू है, बाबा कहते मेरे में कोई जादू नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूं, ये मेरी शक्ति नहीं है, ये भगवान की शक्ति है, भगवान को मुझसे क्या कराना है मुझे कुछ पता नहीं है। मतलब इस प्रकार से एक असमंजस सा था, लेकिन एक ऐसी क्रांति फैल गई सारे हैदराबाद सिंध में कि दादा लेखराज के पास एक चमत्कारिक शक्ति है, जो उनके पास जाता है उनसे श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। तो दूर दूर से लोग आते थे और श्री कृष्ण का दर्शन करते थे। तो पहली ये चमत्कारिक शक्ति जो थी एक क्रांति के रूप में थी। इतनी न्यूज़ चारों ओर फैली जो अमेरिका में टाइम मैगजीन निकलती है जिसमें इंटरनेशनल न्यूज़ आती है, उस मैगजीन में भी ये पब्लिश हुआ था कि हैदराबाद सिंध में एक दादा लेखराज है, उनके पास एक चमत्कारिक शक्ति है, जो उनको देखता है उनको उसमें से कृष्ण के दर्शन होते। और जब ये न्यूज़ चारों ओर फैली तो बाबा तो आश्चर्य खाते थे, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, पर एक क्रांति का रूप था। और इतना ही नहीं, जो उनके सामने आते थे केवल वे ही नहीं साक्षात्कार करते थे, लोगों को घर बैठे भी साक्षात्कार होने लगे, क्योंकि घर में उनको श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था। और श्री कृष्ण छोटा बच्चे के रूप में एक बगीचे में रास कर रहे हैं, और जैसे उनके पास जाते हैं वो बच्चा दूर चला जाता है, और ब्रह्मा बाबा सफेद वस्त्रधारी बूढ़ा वो उनके सामने आ जाता है, और श्री कृष्ण दूर से कहता है मैं ऐसे नहीं मिलूंगा, मेरे से मिलना है तो इनके पास जाओ। अब ये कौन थे तो सब तो नहीं जानते थे, लेकिन ढूंढ ढूंढ करके कैसे बाबा के पास आते थे। तो पहली क्रांतिकारी बात थी साक्षात्कारों की। फिर दूसरी क्रांतिकारी बात क्या थी कि उसमें भी विशेष माताएं और कन्याएं, उनको ज्यादा साक्षात्कार होते थे, पुरुषों को कम, क्योंकि सिंध जो था उसमें जो हैदराबाद सिंध है वो उस समय सिंधी लोग रहते थे और वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उनकी बिजनेस सारे विश्व में थी, अभी भी है सिंधी लोगों की बिजनेस उस समय। तो घर में तो स्त्रियां रहती थी और पुरुष तो बिजनेस करते थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, और वो माताएं बहनें चार दीवारों में जैसे कैद, नो सोशल एक्टिविटीज, कहीं कुछ बाहर नहीं जाना, बस वही परिवार में बच्चों को संभालना, यही था। अब ये जो क्रांति हुई साक्षात्कारों की उसमें तो घर बैठे भी हुई, तो माताओं को था अंदर कि ये क्या है, हम जाके देखें। फिर एक दो को बताते रहे तो उसमें थी ओम राधे, इनका नाम राधे था, ये 17 साल की थी उस समय, इनके लौकिक पिता ने शरीर छोड़ा था, बहुत माँ इनकी दुखी थी, क्योंकि वहाँ उस समय अगर पति गुजर जाए तो एक मातम जैसा हो जाता था, खुले बाल काले कपड़े पहनना, जैसे नहीं वो छाती पीटते हैं, ये होता था, एक साल तक रोते रहना रोते रहना। और ये जो थी कुमारी ये बहुत होशियार थी, स्कूल में मेडल्स लाती थी, गायन कला और संगीत कला नृत्य कला सब इसके अंदर कलाएं थी। अब फादर की डेथ हो गई और मम्मा माँ की ये स्थिति देखकर उसे रहा नहीं गया कि ये मेरी माँ को क्या हो गया है। तो किसी ने उनको कहा कि अपनी माँ को बाबा के पास ले जाओ, इतना रो रही है, आप इनको बाबा के पास ले जाएंगे तो उनको शांति मिलेगी। तो जैसे ये अपनी माँ को बाबा के पास ले गई और इनकी माँ ने बाबा को देखा, और देखते ही उनको श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ उसमें से, और वो भी श्री कृष्ण की भक्ति तो करती थी, तो श्री कृष्ण को देखते इतना जोर जोर से हंसने लगी, जो बात मत पूछो। अब ये भी एक न्यूज़ बन गई कि राधे की माँ रोती रोती आई, हंसती हंसती गई, मतलब इस प्रकार से, तो ये न्यूज़ बन गई। लेकिन बाबा इनके पिता को जानते थे क्योंकि वो भी ज्वेलरी थे, और अचानक हार्ट फेल हुआ, सारा बिजनेस डाउन हो गया, दिवाला निकाला, तो उसके कारण फिर सब बहुत सदमा था। तो कैसे बाबा इनके परिवार को जानते थे, इनका सब कुछ खत्म हो गया था, तो बाबा ने इनको अपने घर में रखा, बड़ा घर था, और इसलिए दोनों को बाबा ने अपने घर में रखा। और ये इनकी आवाज़ बहुत सुरीली थी, तो बाबा इनको कहते थे आप ओम की ध्वनि करो, तो ये ओम की ध्वनि करती थी, सितार बजाती थी, बाबा इनको गीत लिख के देते थे, उनका तर्ज निकाल करके ये गाती थी। मानो कि अब ये 17-18 साल की और बाबा तो 60 वर्ष के थे, कोई फैमिली कोई रिलेशनशिप भी नहीं था, लेकिन इनको जैसे ये अनुभव ये दूसरे इनसे करते थे, ये ओम की ध्वनि करती थी और एकदम से इनका चेहरा बदल जाता था और ये राधे बन जाती थी, राधे, ये राधे और बाबा श्री कृष्ण, और जैसे राधे कृष्ण सामने खड़े हैं। तो इस प्रकार से बहुत अनुभव हुए, चारों तरफ ये एक क्रांति हो गई। तो माताएं बहनें आने लगी, तो ये मम्मा हमारी जो ओरिजिनल इन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी, इनको मम्मा कहते थे, अलौकिक माँ का रूप, जिन्होंने हम इन सब बहनों की पालना की। अब दूसरा जो एक छोटा इंस्टेंस बताती हूँ, दादी प्रकाशमणि, जिनका फोटो है यहाँ दादी का, हाँ दादी प्रकाशमणि, तो आप उस समय 15 साल की थी, तो आप 15 साल की थी, इनका नाम रमा था, रामा। तो ये भी श्री कृष्ण की बहुत भक्ति करती थी। अब इनको घर बैठे साक्षात्कार हुआ श्री कृष्ण का और ब्रह्मा बाबा का, श्री कृष्ण ने इनको कहा कि मेरे से मिलना है तो इनके पास जाओ, लेकिन इसने अब ये कैसे जाए, ये कौन थे तो पता नहीं था। तो जब वो स्कूल गई तो स्कूल में तो ये न्यूज़ वो वाइल्ड फायर की तरह फैली हुई थी लड़कियों के बीच में कि एक दादा लेखराज है, उनके वहाँ जाने से कृष्ण के दर्शन होते, चलो हम भी चलेंगे। तो इसने कहा मैं अपने पिता से पूछूं, छोटी थी। तो जैसे ये घर गई तो इनके जो पिता थे वो ज्योतिषी थे, माना ज्योतिष विद्या जानते थे, जन्म पत्रियां बनाते थे। तो जब इनकी जन्म पत्री बनाई थी तब उनको महसूस हुआ कि मेरी बेटी मीराबाई की तरह बनेगी, अपना जीवन भगवान को अर्पित करेगी। तो ऐसे उनकी जन्म पत्री उनको महसूस हुई, तो इनके प्रति बहुत भावना थी बेटी के प्रति, और वो गीता का पाठ करती थी, श्री कृष्ण की पूजा करती थी, बहुत कुछ करती थी। तो जैसे ये पिता के पास आई स्कूल से, तो पिता ने इनको कहा कि बेटी यहाँ ऐसे सुना है कि एक दादा लेखराज है, उनके उनके पास जाने से कृष्ण के दर्शन होते, तुम तो कृष्ण की भक्ति बहुत करती हो तो तुम जाके देख के आओ, जैसे पिता अपने बच्चों को कहते जाके देख के आओ क्या होता है वहाँ। तो जैसे ये बाबा के सामने आई, बाबा को देखा, तुरंत ध्यान में चली गई, ध्यान में चली गई और श्री कृष्ण का बहुत सुंदर साक्षात्कार किया और सारा सत्संग समाप्त हो गया। ये बैठी रही बैठी रही। अब बाबा इनके पिता को जानते थे क्योंकि छोटा सा स्थान था, हैदराबाद सिंध बड़ा नहीं था, तो हर एक दो को जानते थे सब जो बुजुर्ग थे। तो बाबा ने इनको पहचान लिया, ये उसकी बेटी है, और जानते थे कि अपनी बेटी के बारे में वो कहते रहते थे कि मेरी बेटी तो मीराबाई की तरह बनेगी, कृष्ण को अपना जीवन देगी। तो उस समय बाबा ने एक स्कूल भी बनवाया था, बाबा के अंदर कन्याओं के लिए, नारी शक्ति के लिए बहुत बहुत रिस्पेक्ट था। तो बाबा देखते थे कि नारी शक्ति को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए और आध्यात्मिक शिक्षा मिलनी चाहिए। तो बाबा ने जो स्कूल खोला था उसमें आध्यात्मिक शिक्षा, गीता के ऊपर, रामायण के ऊपर, ये सब भी वहाँ शिक्षा दी जाती थी। तो कैसे बाबा ने इनसे पूछा कि आप उस स्कूल में पढ़ाओगी, उसके लिए आपको अपना जीवन भगवान को अर्पित करना पड़ेगा। तो पिता से पूछा, तो पिता ने इनको कहा आपका जीवन तो है ही भगवान को अर्पित। तो फिर चिट्ठी लिखा के ले आई कि मैं अपनी बेटी को श्री कृष्ण को अर्पित कर रहा हूं, माँ बाप ने लिख दिया और वो भी वहां रहने लगी। इसी प्रकार धीरे धीरे और भी आते गए और एक छोटा सा अलौकिक परिवार बन गया। तो वो सारे वहां रहने लगे और सत्संग करने लगे, मेडिटेशन करने लगे। और फिर भगवान ने एक आदेश दिया, सबको एक प्रतिज्ञा करवाई। और वो प्रतिज्ञा क्या थी कि हम अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाएंगे, पवित्र और योगी बनाएंगे। अब इतनी बड़ी प्रतिज्ञा इन्होंने कर दी और ये तो भगवान की जैसे हो गई। और इतने सारे बढ़ते गए, परंतु हैदराबाद सिंह तो बहुत छोटा था, तो कुछ विरोध भी हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है इतनी छोटी छोटी कुमारियां और ये अपने जीवन को पवित्र योगी बनाएगी। तो बाबा कहते थे ये मेरी शक्ति है ही नहीं, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये ईश्वर की शक्ति काम कर रही है। क्योंकि इतनी कन्याएं माताएं आने लगी, परिवार के परिवार आने लगे और बाबा के आगे समर्पित हो गए। तो कुछ विरोध तो हुआ, लेकिन फिर बाबा हैदराबाद से कराची चले गए। कराची हैदराबाद माना पाकिस्तान जो अभी हैदराबाद है, माना उस वो हैदराबाद। तो फिर कराची चले गए, कराची बड़ा शहर था। तो बाबा कुछ मकान किराए पर लेकर के वहां रहने लगे। तो करीब 385 भाई बहने जिसमें फैमिलीज भी थी, उन्होंने अपना जीवन इसमें समर्पित किया। तो कराची में ये रोज सवेरे क्लिफ्टन बीच है वहाँ कराची में, जैसे मुंबई में जुहू बीच है या चौपाटी है, वैसे वह क्लिफ्टन बीच है। तो वहाँ सवेरे जाते थे और वहाँ एक्सरसाइज भी करते थे और सागर के किनारे बैठकर तपस्या करते थे। तो मम्मा और बाबा अलौकिक मात पिता के रूप में उनकी पालना कर रहे थे। तो कैसे 14 साल 1937 से लेकर 1950 तक 14 साल इन्होंने कराची में तपस्या की। तो कैसे बाबा यही कहते थे सब आत्माएं हैं, सब एक परमात्मा की संतान हैं, उस परमात्मा पिता को याद करो। और फिर साक्षात्कार भी खूब करते थे, तपस्या भी करते थे। और उन्हीं 14 सालों में 37 to 50 दुनिया में परिवर्तन आया, जबरदस्त परिवर्तन आया। पहला परिवर्तन क्या आया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 to 1945, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। और उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दुनिया का नक्शा बदल गया, सारा यूरोप, हाँ वो कैसे ईस्टर्न यूरोप कम्युनिज्म में आ गया रशिया के साथ, और बिल्कुल परिवर्तन, लाखों लोग मारे गए उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और फिर 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, पर ये संस्था वहीं थी, खून की नदियां बही, लिटरली सिविल वॉर का रूप था उस समय जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। और 45 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर तब खत्म हुआ जब अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बॉम्ब गिराया। तो जो बाबा ने साक्षात्कार किया था अणु युद्ध का, ग्रह युद्ध का, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल में हुआ। तो जो शिव बाबा से पूछते थे बाबा क्या ये विनाश है, बाबा कहते थे नहीं, ये तो ट्रेलर है, ये तो ट्रेलर है, जो रियलिटी होगी वो तो और आगे आनी है, ट्रेलर तो कैसा होता है वो तो थोड़ा ही दिखाएंगे। और फिर उसी समय 1946 में शायद 45 में क्वेटा जो शहर है बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में है, वहाँ इतना ज़बरदस्त भूकंप आया था, सुनामी भी आया था, बहुत कुछ था, और पूरा का पूरा शहर तबाह हो गया था क्वेटा का। तो वो भी एक, और मानो चारों ओर प्राकृतिक आपदाएं भी बहुत आई थी, तो वो भी एक तीसरा रूप जो बाबा ने देखा साक्षात्कार में, उसका भी ट्रेलर दिखाई दिया। तो इसी प्रकार से जब ये संस्था वही थी, क्योंकि परमात्मा की छत्र छाया थी, इनका तो बाल भी बाका नहीं हुआ। आते थे आतंक फैलाने वाले लोग, इनसे पूछते थे, ये तपस्या करती थी तो पूछते थे आप किस धर्म के हो, क्योंकि हिंदू हो तो हिंदुस्तान जाओ, नहीं तो धर्म परिवर्तन करो नहीं तो सिर कलम करो, बस ये तीन ही ऑप्शन थे, चौथा ऑप्शन था ही नहीं। अब ये तपस्या कर रही थी तो ये कहते थे हम तो मानव धर्म के हैं। अब मानव धर्म तो सबका होता है चाहे कोई भी धर्म वाला हो, लेकिन 1950 में जब भारत गणतंत्र बन गया 26 जनवरी को, उसके बाद थोड़ी सुलह हुई, शांति हुई, तब शिव परमात्मा ने उनको संकेत दिया अभी भारत में जाओ, तो भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत विश्व का सिरताज बनेगा, सब बहुत सारी शिव परमात्मा ने महिमा की भारत की, भारत से ही विश्व में शांति का संदेश जाएगा, तो इसलिए भारत में जाओ। तो पहले तो कराची में थे तो परमात्मा ने उनको आदेश दिया अभी पहाड़ पर जाओ और पहाड़ से सारे विश्व को शांति का के प्रकंपन देने हैं। तो ये जो माउंट आबू पहाड़ है ये कराची से बहुत दूर नहीं है, आप कल पीस पार्क जाएंगे तो वहां से आप देखेंगे बहुत बड़ा पहाड़ और बिल्कुल उस पहाड़ के पीछे कराची है। तो कैसे वहां के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने बहुत मदद की और उन्होंने कहा कि आप भारत में जा रहे हो तो आप अपना सारा सामान लेकर जाएं, क्योंकि जो उस समय हिंदू सिख या जो भी वहां से भागे थे भारत में यहाँ पर रेफ्यूजी के रूप में आए बिल्कुल हाथ खाली नंगे पैर कुछ भी लेके नहीं आ सके, ऐसी वो स्थिति थी उस समय। लेकिन इनको कहा गया कि आप भले अपना सब कुछ ले जाओ, क्योंकि अभी तो सुलह हो चुकी थी तो कुछ भी नहीं छोड़ा, एक सुई भी नहीं छोड़ी हम तो यहाँ तक बताते हैं, और सब कुछ अपना लेकर के आए और एक शिप भी दिया, ये 1950 की बात है, और एक शिप भी दिया कराची से, कराची से ये आए और उस शिप में एक दो घंटा लगा होगा और ओखा बंदरगाह है सौराष्ट्र में ओखा, तो ओखा पर उतरे और वहां से बाय ट्रेन माउंट आबू आए, आबू रोड आए। तो ये 1950 की ट्रेन है, 14 साल उन्होंने जो तपस्या की दुनिया का मुंह नहीं देखा और उसके बाद दुनिया देखनी शुरू की, पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आ गए और उस समय ट्रेन में कोई रेलिंग नहीं थी तो देखो कैसे बाहर झांक रहे हैं तो उस समय की ट्रेन ही ऐसी थी। और फिर आबू रोड स्टेशन उतरे और फिर वहां से माउंट आबू आए। तो ये जो माउंट आबू है जहां आप हैं इस समय वो राजाओं का ग्रीष्मकालीन स्थान है, राजाएं जो राजस्थान में रहते थे, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स के भी राजाएं थे, तो उन सब ने यहाँ महल बनाए हुए हैं, अलवर पैलेस, जयपुर पैलेस, बीकानेर पैलेस, जोधपुर पैलेस, ये उदयपुर का वालों का उनका पैलेस, सब छोटे छोटे पैलेसेस हैं। तो अभी वो हेरिटेज भी बन गए हैं, अभी होटल भी बन गए हैं, क्योंकि 1950 के बाद तो राजा ही खत्म हो गए, वो गर्मी के दिनों में यहाँ आते थे और यहाँ से ही उनका कैपिटल का जो राजधानी थी मतलब वहां से ही चलती थी। तो 1950 के बाद एक सीलिंग आ गई कि इतनी प्रॉपर्टी आदि नहीं भी रखनी है तो इन्होंने होटल बना दिया। तो अभी माउंट आबू में आपको जो उद्योग यहाँ मिलेगा और कुछ नहीं है, होटल, हॉस्टल और स्कूल, और बाहर से बच्चे आते पढ़ने के लिए यहाँ, तो चारों ओर होटल ही है, हॉस्टल भी है और स्कूल भी है। आप यहाँ माउंट आबू ये ज्ञान सरोवर भी आए होंगे तो सामने लेफ्ट में देखा होगा एक बड़ा पैलेस है, वो अलवर पैलेस है, वहाँ पर आर्य समाजियों का स्कूल चलता है, फिर मतलब कई ऐसे सारे चारों ओर होटल्स हैं और वो सारे पैलेसेस होटल्स में कन्वर्ट कर दिए गए हैं। तो जैसे आबू रोड में आए, माउंट आबू आए, तो भरतपुर राजा का महल है जहाँ आप लोगों ने टोल टैक्स भरा होगा, वहीं पर पास में महल है, तो वहाँ उन्होंने स्थान लिया। और ये माउंट आबू एकदम जंगल था, पूरा जंगल, बहुत कम बस्ती थी क्योंकि केवल राजाएं महाराजाएं आके यहाँ रहते थे और वो आते थे तो ये पहले पहले तो रोड भी नहीं था, अंग्रेज लोगों को भारत के अंदर जहां जहां हिल पहाड़ थे वहां उन्होंने रोड बनवाए, तो ये माउंट आबू का रोड भी अंग्रेजों ने बनवाया। नहीं तो पहले राजा महाराजा जो आते थे हाथियों पर घोड़ों पर चढ़ करके आते थे। यहाँ दिलवाड़ा मंदिर है, वो आप कल जाएंगे देखने के लिए, 1000 साल पुराना मंदिर है, पूरा मार्बल का मंदिर। और कैसे मार्बल ऊपर लाए होंगे हाथी घोड़ों पर, वो भी यादगार है वहाँ उस मंदिर में। तो बाकी सब जंगल ही था, तो कैसे बाबा जंगल में को मंगल बना दिया और कैसे यहाँ तपस्या करते थे। तो 1950 में यहाँ आना हुआ और 1952 में कैसे इन बहनों को निमंत्रण मिला। माउंट आबू से बाहर एक बहन दिल्ली में रहती थी, उनको निमंत्रण मिला कि आप हमारे पास, ये मनोहर इंदिरा दादी है, उस समय तो ये 12 साल की थी जब वो समर्पित हुई, इनके रिश्तेदार दिल्ली में रहते थे, तो उन्होंने इनको निमंत्रण दिया कि आप आकर हमको ये ज्ञान सुनाओ, आपने जो इतनी तपस्या की है 14 साल हमें सुनाओ। तो आप दिल्ली में गए और आप वहाँ ओम की ध्वनि करती थी, तो जैसे ओम की ध्वनि करती थी इनसे देवी का साक्षात्कार सबको होने लगा। और फिर मंदिरों ने बुलाया, वहाँ भाषण करती थी, फिर जमुना किनारे पर बैठ करके बहुत कुछ सत्संग करती थी। और धीरे धीरे हमारा सेवा केंद्र दिल्ली में खुला और उसके बाद धीरे धीरे और शहरों में खुलता गया, भारत के कोने कोने में। और वहाँ से भाई बहने आते थे और मम्मा वो भी जाती रहती थी, ये लखनऊ में मम्मा गई हुई है, वहाँ परिवार के परिवार मम्मा से मिलने आए हैं, कानपुर में भी मम्मा गई हुई है। और कई अभी फोटोज आपको दिखा रहे हैं, दादी प्रकाशमणि बिल्कुल मम्मा के साथ रहती थी और बिल्कुल उनको जैसे मुन्नी मम्मा कहते थे, बिल्कुल मम्मा की कॉपी, और उनके साथ ही रहती थी, साथ में ही कहीं भी जाती थी। और दादी प्रकाशमणि बिल्कुल योगिनात्मा मम्मा के साथ, और मम्मा कैसे धीरे धीरे अव्यक्त फरिश्ता बनती गई, विदेही बनती गई। और 24 जून 1965 को 47 वर्ष 47 ईयर्स की एज में आपने देह त्याग किया। तो बहुत यंग एज थी लेकिन बहुत तपस्या की इन्होंने। और फिर उसके बाद दीदी मनमोहिनी जी एडमिनिस्ट्रेशन संभालने लगे। आप भी शुरू से ही आए, बहुत धनी परिवार की थे, आप का जो परिवार है वो बहुत धनी थे। तो वो जब भारत में आए तो मुंबई का जो जसलोक हॉस्पिटल है वो इनके रिश्तेदारों द्वारा बनाया गया है। जसुमती लोकुमल इनके चाचा चाची थे और उन्होंने बॉम्बे में जसलोक हॉस्पिटल बनाया। जो सिंधी लोग आए तो उनके तो बिजनेस तो विश्व में थी, तो हॉस्पिटल बनाए, कॉलेजेस बनाए मुंबई में। तो ये उनके परिवार की थी। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनी और फिर बाबा भी बाहर जाते थे, दिल्ली में गए हैं, फिर ये जलंधर का एक ग्रुप माउंट आबू आया है, ये सब परिवार के परिवार आते रहे। जल्दी कर रही हूँ, पर एक ही लक्ष्य सबका था कि सबका मालिक एक है, परमात्मा है, उनको याद करो और देह के धर्मों को त्यागो। परमात्मा शिव है, वो निराकार है, ज्योति स्वरूप है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, ईसाई है, सब भाई भाई है, एक पिता परमात्मा की संतान है। और ब्रह्मा बाबा सबको पत्र लिखते थे, जो भी बाबा को पत्र लिखते थे वो उनको बाबा जरूर जवाब देते थे। तो मैं भी, मेरा भी ये सौभाग्य, जैसे बहन ने कहा कि मैं 12 साल की थी 1960 में, 12 साल की थी और उस समय मैं ज्ञान में आई अपनी माँ के साथ। तो 67 में मैं इंटर साइंस में थी और घर में सब कह रहे थे कि आप डॉक्टर बनो, मेडिकल लाइन लो। तो मैंने बाबा को पत्र लिखा, बाबा मैं क्या करूँ, 17 इयर्स गर्ल। तो बाबा ने मुझे जवाब दिया, बाबा ने कहा कि तुम रूहानी डॉक्टर बन करके विश्व की सेवा करो। ये बाबा ने मुझे वरदान दिया उस समय। तो हमने सोचा कि बस अभी और आगे पढ़ना नहीं है, परंतु फिर भी ग्रेजुएशन किया और 69 में मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, बीएससी किया बॉम्बे यूनिवर्सिटी से और उसके बाद मैं समर्पित हुई। लेकिन ये बाबा के पत्र हैं, बाबा उर्दू में लिखते थे क्योंकि हैदराबाद सिंध में रहते थे तो उर्दू ही, पर सिंधी लोग ऐसे लिखते हैं। और तो आप माउंट आबू में, अभी ये ज्ञान सरोवर कॉम्प्लेक्स है, इससे 4 किलोमीटर की दूरी पर जो मेन हेडक्वार्टर्स है हमारा पांडव भवन, वहाँ आप जाएंगे देखेंगे, कल आपका दोपहर से साइट सीइंग है। तो ये ओरिजिनल हेडक्वार्टर्स वहीं हैं जहाँ ब्रह्मा बाबा रहते थे। तो ये बाबा की झोपड़ी है, वो भी आप देखेंगे। और बाबा यहाँ ही पत्र लिखते थे। और ये बाबा का हिस्ट्री हॉल है जहाँ बाबा बैठ करके वाणी चलाते थे, जिसको हम ज्ञान मुरली कहते हैं। ये हिस्ट्री हॉल में लगभग 200 भाई बहने बैठ सकते हैं। चारों ओर फोटोज लगे हुए हैं इस यज्ञ इतिहास के। और ये बाबा का कमरा है जहाँ बाबा सोते थे, रहते थे, वही बेड है। और यहीं बाबा नीचे मिलते थे, इसी कमरे में मिलते थे। अभी वो मेडिटेशन रूम है बाबा का कमरा, बिल्कुल चार्ज रूम। आप जाएंगे एकदम साइलेंस का, शक्ति का अनुभव करेंगे। और 18 जनवरी 1969 एट द एज ऑफ 93 ईयर्स, 93 वर्ष की उम्र में बाबा ने अपना देह त्याग किया और अव्यक्त हुए। लेकिन लास्ट तक बाबा ऐसे बैठते थे, बिल्कुल कभी चश्मा नहीं लगाया, कभी लकड़ी नहीं उठाई, कमर नहीं झुकी। लेकिन 93 इयर्स की उम्र तक बाबा ने सेवा की और ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए इन 1969 ऑन 18 जनवरी 1969। और ब्रह्मा बाबा की याद में शांति स्तंभ पांडव भवन में बनाया गया जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ, उनकी समाधि है। जरूर आप मां कल जाएंगे तो देखेंगे। तो ये चार धाम पांडव भवन में आप ब्रह्मा बाबा के देखेंगे। शांति स्तंभ पर 18 जनवरी पर हजारों लोग आते हैं और अपने श्रद्धा सुमन ब्रह्मा बाबा को अर्पित करते हैं। ये शांति स्तंभ पर आप कल देखेंगे, जाएंगे माउंट, जाएंगे पांडव भवन। तो ये चार धाम है पांडव भवन में, जिसको हम कहते हैं ब्रह्मा बाबा के चार धाम, शांति स्तंभ, हिस्ट्री हॉल, बाबा की झोपड़ी और बाबा का कमरा। ये जरूर आप देखेंगे और वहाँ थोड़ा समय बैठेंगे और वहाँ के वाइब्रेशंस लेना। तो और फिर बाबा के अव्यक्त होने के बाद 69 में दादी प्रकाश मणि जी चीफ बने। तो 1969 to 2007 38 वर्षों तक दादी प्रकाश मणि जी के सानिध्य में यह संस्था बहुत ही आगे बढ़ी, दिन दुगनी रात चौगनी गति से ही आगे बढ़ी। तो दीदी मनमोहिनी तो थे ही और दादी प्रकाशमणि उनके साथ, दोनों ने मिल करके ये इस कार्य को संभाला। तो हम इनको कहते थे दो हंसों का जोड़ा, कैसे दोनों ने मिल करके इतना सुंदर एडमिनिस्ट्रेशन संभाला। और 1970 के बाद हमारे सेवा केंद्र विदेशों में खुले इनके सानिध्य में। तो जो उस समय 16 साल 15 साल 14 साल की कुमारियां थी वो सब हमारी वरिष्ठ दादियां बनी, जिन दादियों से हम लोग प्रेरणा लेते थे। और कैसे 1972 में हमारा पहला विदेश में सेवा केंद्र खुला लंदन में, और 74 में विदेशियों का लंदन से पहला ग्रुप माउंट आबू आया। तो ये भी आप देख रहे हैं। और फिर 1983 में पांडव भवन के सामने हमारा, वहाँ एक बहुत बड़ा ओम शांति भवन है जहाँ 3000 भाई बहने बैठ सकते हैं उस हॉल में पांडव भवन के सामने। तो वो भी आप देखेंगे ज़रूर, वहाँ भी हमारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं। बहुत भव्य एक संत सम्मेलन हुआ था, वो तो एक इतिहास था कि सफ़ेद वस्त्रधारी बहने और गेरुए वस्त्रधारी संत महात्माएं का कैसे समागम हुआ। चारों ओर से संत महात्माएं आए थे, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट से। और ये कार्यक्रम हुआ और ये ज्ञान सरोवर 95 में बना, जहाँ पर ये एकेडमी हमारी चल रही है। और उसके साथ साथ यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर ग्लोबल हॉस्पिटल है, वो भी माउंट आबू में है अपना, जहाँ पर 50% जो स्टाफ है, तारा मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, सब समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। और आउटरीच प्रोग्राम्स होते हैं गांव-गांव में, यहाँ चारों ओर बहुत गांव हैं, क्योंकि ये पूरा ट्राइबल बेल्ट है, आदिवासी एरिया है, तो काफ़ी गरीबी भी है गांव-गांव में। और इसीलिए ये हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल एक बहुत उनके लिए एक क्या वरदान साबित हुआ है। तो ये चैरिटेबल हॉस्पिटल है और कई कई संस्थाओं से, विदेशों से भी फंड्स आते हैं और गांव-गांव में सेवाएं होती है, वो भी आप हॉस्पिटल भी देखने जाएंगे, यहाँ माउंट आबू में है। और जो नीचे आबू रोड पर अपना बहुत बड़ा शांति वन है, करीब 70-80 एकड़ में बना हुआ है, जहाँ हजारों भाई बहने रह सकते हैं। और वहाँ का जो हॉल है, जिसको हम डायमंड हॉल कहते हैं, यहाँ 20,000 लोग बैठ सकते हैं उस डायमंड हॉल में। तो डायमंड जुबली ईयर 1996 में ये डायमंड हॉल तैयार हुआ था, जब 60 साल इसको जो हुए थे संस्था को, तो वहाँ हमारे कार्यक्रम होते रहते हैं और दादी प्रकाशमणि जी के सानिध्य में बहुत कुछ बना। और 25 अगस्त 2007 को दादी प्रकाशमणि जी ने अपना देह त्याग किया 85 साल की उम्र में, और नीचे शांति वन में उनकी समाधि बनाई हुई है, जहाँ उनका अंतिम संस्कार हुआ शांति वन में। तो वो भी आप देखने जाएंगे, जब शांति वन देखेंगे, इसका नाम रखा है प्रकाश स्तंभ। और फिर दादी जानकी जी, जो ये 4 साल पहले का हमने वीडियो ये निकाला है, तो दादी जानकी जी उस समय मुख्य प्रशासिका रही, आपने अपना देह त्याग किया 2020 में, तो आप मुख्य प्रशासिका थी, 104 साल की उम्र में आपने देह त्याग किया अभी कुछ साल पहले। और फिर दादी जानकी जी भी बहुत एक्टिव थी विदेशों में, दादी जानकी जिस जिस देश में जाती थी वहाँ सेवा केंद्र खोल लेती थी, तो आप भी ट्रेनिंग देती रहती थी। ये हमारा नीचे ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ टीचर्स का क्लास कराते हैं, और एक एक लाख की सभा में भी दादी जी भाषण करते थे। फिर दादी हृदय मोहिनी जी, वो मुख्य प्रशासिका बनी, सह मुख्य प्रशासिका के बाद मुख्य प्रशासिका, आपने भी अपना देह त्याग किया 2021 में, 2 साल पहले ही। और आपके अंदर ये विशेषता थी, आप बहुत ट्रांस में जाती थी, और परमात्मा शिव और ब्रह्मा पिता, अव्यक्त ब्रह्मा, इनके देह में प्रवेश करते थे और वाणी चलाते थे, जिसको हम अव्यक्त बाप दादा कहते हैं, और वो वाणी फिर सब तरफ रिले होती थी और हमारे ट्रांसमिशन होता था। हमारा खुद का चैनल है, ओम शांति चैनल, तो वो उस चैनल में भी आता रहता है, अभी भी आता रहता है। पीस ऑफ माइंड चैनल भी है, कई चैनल्स हमारे चलते हैं, तो उसमें पीस ऑफ माइंड भी मेन चैनल है, आप लोग देखते होंगे, शिवानी के कार्यक्रम भी उसमें बहुत आए, और भी बहुत प्रोग्राम्स वहाँ होते रहते हैं। परंतु किसने ये प्रोग्राम देखा है पीस ऑफ माइंड पे, हाथ उठाई, अच्छा इतने सब ने देखा है, वेरी गुड, मुबारक हो आपको कि आपने ये देखा, तो ज़रूर अपने लिए आप ताली ज़रूर बजाएंगे, आपने ये अनुभव किया है। तो अभी तो हम तो यही कहेंगे कि अभी भी अव्यक्त रूप में परमात्मा अपना कार्य कर रहे हैं। वर्तमान समय दादी रतन मोहिनी जी, वो भी 99 ईयर्स की है, वो भी उस समय 12 साल की थी जब आई थी, अभी 99 ईयर्स की है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप में है, नीचे शांति वन में ही रहते हैं। तो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय कैसे दिन दुगनी रात चौगनी गति से आगे बढ़ता रहा और हमारे का चारों ओर कार्यक्रम होते रहते हैं। हम तो यही कहते हैं कि आप यहाँ आए, अपने जीवन को धन्य बनाया, अब यहाँ से आप क्या लेकर जाएंगे, क्या देकर जाएंगे, ये आप सोचना। कई कहते हैं यहाँ की फीस क्या है, हम कहते हैं यहाँ की फीस है 5 खोटे पैसे, 5 खोटे पैसे और 1 आना। देने के लिए तैयार हो? 5 खोटे पैसे और 1 आना, माना 5 खोटे पैसे देकर जाओ और 1 आना लेकर जाओ, है ना। 1 आना लेकर जाओ माना 1 बार सेवा केंद्र पर रोज आना, ये है आना। 16 तो 16 आना होते ना, तो कुछ देके जाना है, कुछ लेके जाना है ना। वो गीत भी है ना, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, कुछ देके जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे। तो अपनी कमियां कमजोरियां विकृतियां ये सब यज्ञ के अंदर स्वाहा करके जाओ और अपना नया जीवन यहाँ से लेकर जाओ, यही हमारी शुभकामना है आपके लिए। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय शीलू दीदी जी का। 87 ईयर्स की जो कहानी है उस सागर को गागर में दीदी ने समा दिया। कितना अच्छा, कितनी सुंदर तरीके से सारी बातें दीदी जी ने हमारे सामने रखा। तो यही है कि खुशी की बात है। हाँ जी
क्या दादी प्रकाशमणि क्या
नहीं, नहीं, लाल प्रकाश जो है वो
ये अलौकिक नाम शिव बाबा ने दिए। दादी प्रकाशमणि, मनमोहिनी, मनोहर इंद्रा, ये कई नाम उस समय जो समर्पित हुए ना उनका नाम बदली किया। नाम तो उनका कुछ और था।
लाल प्रकाश का कुछ कह रहे हैं,
लाल प्रकाश वो ज्योति, ज्योति परमात्मा की ज्योति, ये ज्योति का प्रतीक है।
वो ये कह रहे हैं मेडिटेशन जब करते हैं तो लाल प्रकाश रेड लाइट क्यों जलाते हैं?
वो लाल लाइट क्यों, ये परम धाम की निशानी है। परम धाम जो आत्माओं का लोक है ना, वो सुनहरा लाल प्रकाश का महत्त्व है। तो उसका साक्षात्कार जो किया है वो अनुभव कराने के लिए लाल प्रकाश जलाते, गोल्डन रेड कलर ये अनुभव। तो ऐसे अनुभव करते जैसे हम परम धाम में शिव परमात्मा के सामने हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी का। मैं समझती हूँ कि सारी बातें आपको स्पष्ट हुई और सचमुच इस समय परमात्मा का डायरेक्ट अपना करते हुए चल रहा है। और दीदी जी ने कहा कि अव्यक्त रूप में परमात्मा का कार्य भी चल रहा है। आप महसूस करेंगे, कर भी रहे होंगे इस तरीके से, जो एक इतना सारा, इतने सारे लोग हैं, लेकिन कितनी शांति से सारा कारोबार हो रहा है, ना आवाज है ना नेगेटिविटी है। तो जरूर कोई शक्ति है, लेकिन वो शक्ति परमात्मिक शक्ति है, परमात्मा की शक्ति से ही ये कारोबार चल रहा है। तो मैं समझती हूँ कि आप जहाँ से भी आए हैं वहाँ उस एरिया में हर जगह पे ब्रह्मा कुमारी इसके सेंटर हैं। आप वहाँ जरूर जाइए, जाकर के हमारा जो 7 डेज का कोर्स है वो आप जरूर करिए। आपको ऐसा न हो कि परमात्मा आकर के चले जाए। कहते हैं ना कि जब भगवान भाग्य बांट रहा था क्या तुम सोए हुए थे? तो वो समय सचमुच अभी आने वाला है कि भगवान प्रैक्टिकल में भाग्य बांट रहा है, लेकिन ऐसा न हो कि भगवान भाग्य बांट करके चले जाए और हम हाथ ऐसे ही मलते रहे। तो यहाँ आप आए हैं, यहाँ आना है, सिर्फ ये नहीं है कि आपको निमंत्रण मिला, लेकिन ये परमात्मा का ही निमंत्रण है। परमात्मा आपके कई जन्मों का भाग्य बनाने वाले हैं, बनाना चाहते हैं, इसलिए यहाँ बुलाया है। तो जैसे अभी दीदी जी ने कहा कि आप यहाँ आए हैं, बहुत अच्छा संकल्प लेकर के जाना, कुछ छोड़ के जाना है और कुछ ले करके जाना है, और अपना जीवन को बहुत श्रेष्ठ सुंदर पवित्र जीवन बनाना है। तो यही शुभ भावनाओं के साथ हम इस सेशन को पूरा करते हैं।